શ્રવણ બેલગોલામાં પૂજ્યભાઈ શ્રી લાલચંદભાઈનું તારીખ 3/1/86 સમયસર ગાથા 6 પર પ્રવચન, સડંગ પ્રવચન નંબર 117.
એક પણ જણાયો, જાણનાર પણ જાણને માં આયા, એક ખંભારું ભૂમે એસે જાણને મેં નહીં આયા, और खंभा को जाननहार हूं ऐसा भी नहीं आया, खंभा का ज्ञान मेरा है ऐसा भी नहीं आया, मगर खंभा जब जानने में आता है उस समय जाननार ज्ञायक ज्ञायक रूपे जानने में आ गया है, तो ग्रह कर्ता शुद्धता लागू पड़ती नहीं, स्वतंत्र अपने आप ज्ञायक स्वतः सिद्ध सिद्धि हो जाती है। जाननार पणे जान आया, ज्ञायक पणे जानने में आया, वो आत्मा स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में वो ज्ञान खंभे को जानता है तो भी जाननार जानने में आता है, और अपने को जो उपयोग लगाकर अंदर में जाता है तो भी वही का वही जाननारा जानने में आता है, उसमें कुछ फर्क होता नहीं है। जब खंभा जानने में आया त्यारे अधूरा आया जानने में, अने अंदर में गया तो पूरा जानने में, ऐसा है नहीं। खंभा का प्रतिभास होता है तब भी वो ज्ञायक पणे जणाया, अने स्वरूप का प्रकाशन अंदर में हुआ, निर्विकल ध्यान में जाता है उपयोग, अंदर में चले जाता है तो भी स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी ज्ञायक ही है। अभी ज्ञायक है सर्व अवस्था में, उसका कारण क्या लॉजिक देते हैं, फिर से सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म बात है कि जब खब्भा ज्ञान में प्रतिभास होता है ज्ञान की पर्याय में, तब ज्ञान की पर्याय में ऐसा जानने में आया कि मैं तो जानना हूं, मैं तो जानना हूं, जानना हूं, मैं तो जानना हूं, क्यों जानना हूं कि वो जो ज्ञान की पर्याय ज्ञायक को जाना, वो ज्ञायक को जाना तो जानने रूप परिणाम, तो परिणामी हुआ, तो परिणामी कर्ता ने परिणाम कर्म, कर्ता कर्म का अनन्यपण हो गया, जाननार इसलिए कर्ता, अने जनाया आत्मा इसलिए आत्मा कर्म, जो जाननार आत्मा अने ओ जनाता है ओ मेरा कर्म, अथवा अथवा जाननारा तो मैं आत्मा इधर इधर रखा, अने जानने लायक पदार्थ वो मेरा कार्य कर्म, ऐसा है नहीं। एक बात, दूसरा बात कि मैं तो जाननार हूं, और जो इंद्रिय ज्ञान में वो खंभा जानने में आया वो ज्ञान अंश मेरा कर्म, ऐसा भी नहीं है। क्यों? कि ज्ञायक से इंद्रिय ज्ञान भिन्न है, इसलिए कर्ता कर्म संबंध उसमें लागू पड़ता। सूक्ष्म बात है, परिचय फिर से, ये भगवान जो आत्मा जाननार जाननार ज्ञायक ज्ञायक ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है ने, ज्ञान गुण से भरा हुआ भगवान आत्मा है ने, तो वो जो ज्ञायक है जानना, वो जब पर पदार्थ ज्ञेय का प्रतिभास होता है तब ज्ञेय मात्र जानने में आवे तो अज्ञान है, और ज्ञेय का लक्ष्य वाला इंद्रिय ज्ञान जो कर्म बन जावे तो भी अज्ञान है। तब क्या होता है कि जब खब्भा जानने में आया तब वो ज्ञान की पर्याय ज्ञायक के साथ तन्मय होकर ज्ञायक को जानता है, तो जानने वाला कर्ता ने जनाया वो भी कर्म, वो जनाया नहीं, वो जनाया नहीं। और जो ये जानने वाला जानने में आया वो कर्ता, अने ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई, ज्ञायक को प्रसिद्ध करने वाली ज्ञायक शुद्ध ज्ञान पर्याय प्रकट हो गई, वो कर्म ऐसा भी नहीं है। ये कर्म नहीं है, इसका लक्ष्य से होने वाली इंद्रिय ज्ञान की पर्याय वो कर्ता का कर्म नहीं है, और आत्मा को जानने वाली ज्ञान की जो पर्याय वो भी कर्ता का कर्म नहीं है। वो ये तो कर्ता का कर्म नहीं है, इंद्रिय ज्ञान कर्ता का कर्म नहीं है, और अतीन्द्रिय ज्ञान का जो भेद है वो भी परमार्थ से कर्ता का कर्म नहीं है, वो भी भेद हो गया। तो कर्ता ही आत्मा, कर्म भी आत्मा, कर्ता कर्म क्रिया भेद नहीं भासतु है। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का भेद दिखाता, ज्ञाता ध्यान और ज्ञेय का भेद विलय हो जाता है। ऐसी निर्विकल ज्ञान की अवस्था में आत्मा ही कर्ता, आत्मा ही कर्म। क्योंकि आत्मा कर्ता क्यों, के परिणामी आत्मा जो हुआ अपने को जानने के लिए प्रवृत्ति हो गई, जानने वाला जानने में आया, जानने वाला जानने में आया, तो जो जाननहार है वो तो कर्ता है, अने जिसको जाना वो कर्म बन गया। किसको जाना, आत्मा को जाना। तो ये अभेद रूप से कर्ता कर्म का अनन्यपना, उसका नाम ज्ञाता ज्ञान ने ज्ञाता ध्यान ध्येय की एकता है। और बाद में कर्ता कर्म का अनन्यपना होकर कर्ता भी आत्मा ने कर्म भी आत्मा, पर्याय कर्म नहीं। बाद में अनुभव करके बाद आता है ज्ञानी बाहर में सविकल्प दिशा में, तो दूसरे को समझाने के लिए कहा जाता है कि आत्मा करता है। अनशुद्ध ज्ञान जो आत्मा को प्रसिद्ध किया वो शुद्ध ज्ञान का परिणाम आत्मा का कर्म है, मगर राग तो आत्मा का कर्म है नहीं। क्योंकि कर्ता कर्म का अनन्यपना होवे तो वो भेद को कार्य कह कहा जाता है। उन्नान में अंदर की बात है, तो राग तो आत्मा का प्रसिद्ध करने वाला है ही नहीं, इसलिए राग कर्ता का कर्म है ही नहीं। एक बात, शास्त्र तो आत्मा को प्रसिद्ध करने वाला है ही नहीं, इसलिए शास्त्र तो कर्ता का कर्म है नहीं, वो तो पुद्गल का कार्य है, आत्मा का कार्य नहीं है। दूसरी बात कि जो राग उत्पन्न होता है प्रशस्त राग, उससे भी आत्मा जानने में आता नहीं है, इसलिए वो कर्ता का कर्म नहीं, इसलिए राग के साथ आत्मा का अनन्यपना होता नहीं है, जड़ चेतन भिन्न रहता है। और शास्त्र सम्मुख का इंद्रिय ज्ञान, उसमें भी आत्मा अनुभव में आता नहीं है, इसलिए वो भेद अपेक्षा से भी वो कर्ता का कर्म नहीं है, और अभेद अपेक्षा से कर्ता कर्म नहीं है। क्यों, कि इंद्रिय ज्ञान परालंबी होने से कर्ता कर्म का अनन्यपण हो सकता, वो इंद्रिय ज्ञान आत्मा के साथ अनन्यपण होता नहीं है, परालंबी ज्ञान है। और अतीन्द्रिय ज्ञान जो प्रकट हुआ वो आत्मा का कर्म है, वो भी भेद अपेक्षा से है। अभेद अपेक्षा से तो आत्मा ही कर्ता, आत्मा ही कर्म, आत्मा करण संप्रदान अपादान अधिकरण सटकारक अभेद रूपे आत्मा ही है, मगर इधर तो कर्ता कर्म दो भेद है, कर्ता कर्म का अनन्यपना। तो कर्ता कर्म ना अनन्यपना होवा थी ज्ञायक अच्छे अपने को अपने से जाना, अपने को जाना, अपने से अपने को जाना, अपने से यानी आत्मा से आत्मा को जाना, देह से आत्मा जाना, पुण्य पाप का परिणाम से आत्मा जाना नहीं, शास्त्र से आत्मा जाना नहीं, इंद्रिय ज्ञान से आत्मा जाना के नहीं, आत्मा से आत्मा को जाना। आत्मा होकर आत्मा आत्मा को जानता है, अनात्मा होकर आत्मा को जानने में आता, अनात्मा आत्मा को जानता नहीं है। अनात्म तत्व है, अनात्म तत्व है, मगर वो आत्मा को जानता, कौन सा अनात्म तत्व है, जो भाव से तीर्थंकर कर्म की प्रकृति का बंध होता है ऐसा उत्कृष्ट शुभ भाव उससे आत्मा अनुभव में आता। क्या कहा? जो भाव से तीर्थंकर कर्म की नाम कर्म की प्रकृति है ना, तणु तणु प्रकृति है, उसमें एक तीर्थंकर नामा नाम कर्म की प्रकृति है, बनती है। अगाति कर्म है काति कर्मा नहीं, पुण्य प्रकृति है, पुण्य प्रकृति जड़ प्रकृति बनती है। तीर्थंकर होने वाला अभी जो नरक में है ना, पहली नरक में क्षणिक महाराजा का जीव, समय समय पर पुण्य प्रकृति बनती है नरक में भी अभी। तो वो जो शुभ भाव से कर्म की प्रकृति का बंध होता है, वो शुभ भाव से आत्मा का अनुभव होता नहीं, क्योंकि वो अनात्मा है। उत्कृष्ट शुभ भाव वो भी अनात्म तत्व है, उसमें स्वपर प्रकाशक जागृति का अंश बिल्कुल है नहीं, वो अंधा है, वो चेतन है, जड़ है। तो ओ तो आत्मा का अनुभव में काम आता नहीं है। और जो बहिर्मुख इंद्रिय ज्ञान, उसे भी आत्मा अनुभव में आता नहीं है, क्योंकि उससे वो आत्मा अनन्य होता नहीं, अन्य रहता है। जिसे राग से आत्मा अन्य रहता है, ऐसे इंद्रिय ज्ञान से भी आत्मा अन्य रहता है, इसलिए अनन्य होता नहीं है। और दूसरा शांति भाई सरस बात छो, और तीसरा जो अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हुआ, वो भी अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान में भगवान आत्मा, उसका दो के बीच में भेद ख्याल में आता है, तब तक अनुभूति होती नहीं है। और अतीन्द्रिय ज्ञान आत्मामय होकर, आत्मा रूप होकर आत्मा को जानता है, तब अनुभव होता है, तो भेद निकल जाता है। कर्ता कर्म का भेद, कर्ता द्रव्य अने शुद्ध उपयोग उसका कर्म, ऐसा भेद निकल जाता है, तब अनुभव होता है, तब कर्ता कर्म का अनन्यपना होता है, तब आत्मा ने आत्मा को जाना। वो तो समझाना के लिए दो बात बता, दो आत्मा नहीं है, दो आत्मा, आत्मा ने आत्मा को जाना वो तो समझाने के लिए है, बाकी आत्मा एक है, आत्मा एक है, उसके अंदर तीन प्रकार का स्वभाव होता है, ज्ञाता भी आत्मा, ज्ञेय भी आत्मा, ने ज्ञान भी आत्मा, ऐसा तीन स्वभाव का भेद है, वो भेद छूट जाता है। आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ज्ञाता ने आत्मा ज्ञान, ऐसा तीन भेद निकल जाता है, उसका नाम आत्मा ने आत्मा को जाना यानी अनुभव किया, वहां से सम्यक दर्शन की प्रगटता होती है। तो कर्ता कर्म का अनन्यपना होवाति ज्ञायक अच्छे, अभी उसका खुलासा पंडित जी करते हैं। जयचित पंडित जी वो खुलासा करते हैं, पोते जाननारो माटे पोते करता, जाननार वो आत्मा ही है, जो जाननार है, जाननार है सो आत्मा है, तो जाननारा है वो कर्ता हो गया, अने पोता ने जानो अपने को जाना, अपने को जाना, देवगुरु शास्त्र को जाना नहीं, समयसार को जाना के नहीं, बाहुबली को जाना के नहीं, राग को जाना के नहीं, इंद्रिय ज्ञान को जाना के नहीं, गुण भेद को जाना के नहीं, तो पोते जाननारो माटे पोते करता, अने पोता ने जानो अपने को जाना, अपने के द्वारा अपने को जाना, तो वही आत्मा कर्म हो गया। परिणामी आत्मा करता, परिणामी आत्मा कर्म, अपरिणामी आत्मा अकर्ता, अपरिणामी अकर्ता कायम रहकर अपरिणामी का लक्ष्य किया तो परिणामी हो गया, तो परिणामी हो गया तो अपने को जाना, तो कर्ता कर्म हो गया। तो जाना माटे पोते कर्म, એને આત્મા કર્મ બન ગયા, પર્યાય નહીં, પર્યાય નહીં. જ્ઞાન કી જો શુદ્ધ જ્ઞાન કી પર્યાય હૈ વો તો ભેદ સે કહા જાતા હૈ. અભેદ સે તો આત્મા હી સારા, સારા આત્મા. જ્ઞાન મેં યે હો ગયા સામાન્ય વિશેષ આત્મા સારા, જો જાણને મેં આયા એકલા ધ્રુવ જાણને મેં આયા નહીં, ઉત્પાદ મેં ધ્રુવ સત સારા જાણને મેં આયા, પરિણામી દ્રવ્ય જાણને મેં આયા, તો પરિણામી દ્રવ્ય કર્મ હો ગયા. દ્રષ્ટિપૂર્વક ધ્યેય પૂર્વક જ્ઞેય હોને કી બાત હે, ધ્યેય તો સુરક્ષિત હૈ ઉસમેં, ધ્યેય કા હી ધ્યાન હોતા હૈ. મગર ધ્યેય કા ધ્યાન હોતા હૈ તબ ધ્યેય ઓર ધ્યાન કા ભેદ નિકલ જાતા હૈ, તો જ્ઞાતા બન જાતા, તો જ્ઞાતા મેં સામાન્ય વિશેષાત્મક સારા પરિણામી દ્રવ્ય હો જાતા હૈ. જેમ દીપક દ્રષ્ટાંત દેતે હૈ, જેસે દીપક ઘટપટ આદિ કો પ્રકાશિત કરવા કી અવસ્થા મેં દીવા હૈ ને, તો ઓ ઘટ કો પ્રસિદ્ધ કરતી હૈ, દીવા પ્રકાશ અવસ્થા મેં દીપક હૈ, ઘડા કો પ્રસિદ્ધ કરે તો ભી દીપક, અને દીપક અપની શિખા કો પ્રસિદ્ધ કરે તો ભી દીપક હૈ. દીપક મેં ક્યાં કુછ ફરક પડતા હૈ, ઘડા કો પ્રસિદ્ધ કરે તો ભી દીપક, ઓર દીપક અપને કો પ્રસિદ્ધ કરે ઉસકા જો પ્રકાશ હૈ, પર કો પ્રસિદ્ધ કરે કે સ્વ કો પ્રસિદ્ધ કરે ઉસમે કુછ ફરક હોતા, દીપક તો દીપક હી હૈ. પ્રકાશિત કરવાની અવસ્થામાં દીપક અને પોતાને પોતાની જ્યોતિરૂપ શિખાને પ્રકાશવાની અવસ્થામાં પી પણ દીપક જ, હા દીપક હી, દીપક મેં કોઈ ફરક હોતા નહીં. અન્ય કઈ નથી તેમ નાયકનું સમજવું. લ્યો કેટલા દિનો બાદ પૂરી હો ગઈ ટીકા, પૂરી હોઈ અભી ભાવાર્થ બાકી હૈ. ભાવાર્થ અશુદ્ધપણું પર્યાયમાં જે અશુદ્ધપણું અનંતકાળથી જે આવે છે એ અશુદ્ધપણું ઓર દ્રવ્યના સંયોગથી આવે છે, ઓર દ્રવ્ય સે આતા નહીં હૈ. જો અશુદ્ધતા આતી હૈ પર્યાય મેં ઓ પર દ્રવ્ય સે આતી નહીં હૈ. પર દ્રવ્ય કા જબ લક્ષ્ય કરતા હૈ આત્મા, વ્યવહાર આત્મા લક્ષ્ય કરતા હૈ, નિશ્ચય આત્મા તો લક્ષ્ય કરતા નહીં હૈ, પર્યાય લક્ષ્ય કરતી હૈ. મેં તો પર કા લક્ષ્ય કરને વાલા નહીં હું. અશુદ્ધપણું પરદ્રવ્યના સંયોગ સે આવે છે, ત્યાં મૂળ દ્રવ્ય તો ઓહી ટાઈમ જબ પર્યાય મેં રાગાદી કી પ્રગટતા હોતી હૈ, ઓહી ટાઈમ એકી સમય મૂળ દ્રવ્ય તો અન્ય દ્રવ્ય રૂપ હોતા નહીં, એવું જ્ઞાયક ભાવ તો રાગ રૂપ હોતા નહીં. જ્ઞાયક તો જ્ઞાયક રહેતા હૈ, મગર જ્ઞાયક કી વિશેષ જો અવસ્થા હૈ ઓ જ્ઞાયક કી સન્મુખ ન કર પર કી સન્મુખ જબ જાતા હૈ તબ પરિણામ મેં રાગાદિ કી અશુદ્ધતા પ્રગટ હોતી હૈ, વો ભી એક સમય કે લિયે હૈ, ત્રિકાળ નહીં પર્યાય હૈ. પર્યાય તો પલટ જાતી હૈ, રાગ કા અવ્યય હોકર વિતરાગ ભાવ હો જાતા હૈ, મિથ્યાત્વ કા અવ્યય હોકર સમ્યક દર્શન હો જાતા હૈ. માત્ર પરદ્રવ્યના નિમિત્તથી અવસ્થા મલિન થઈ જાય છે, અવસ્થા મલિન હુઈ ઓ તો અશુદ્ધ ઉપાદાન કા કારણ સે હુઈ, કર્મ કા ઉદ્દેશ્ય અશુદ્ધતા હતી નહીં. મગર અશુદ્ધતા જબ હોતી હૈ પર્યાય મેં રાગ હોતા હૈ, તો રાગ સ્વાશ્રય છે નહીં હોતા હૈ, રાગ પર કા નિમિત્ત કા લક્ષ્ય સે હોતા હૈ, તો પરદ્રવ્યના નિમિત્તથી અવસ્થા મલિન થઈ જાય છે. અવસ્થા યાને હાલત પર્યાય મલિન હોતી હૈ, ભગવાન આત્મા મલિન હોતા ક્યા કહા, અવસ્થા મલિન હો જાતી હૈ. આશ્રમ કી મલિનતા હૈ, જીવ મલિન હોતા મલિનતા નવ તત્વ મેં કોણ સે તત્વ મેં લાગુ પડતી હૈ, મલિનતા સંવર નિજરા મેં લાગુ પડતી હૈ નહીં, મોક્ષ મેં નહીં, જીવ મેં. તો મલિનતા ધર્મ કિસકા હૈ, આશ્રમ કા, આશ્રમ મલિન હોતા હૈ, મેં તો મલિન હોને વાલા. દેખો પરદ્રવ્યના નિમિત્તે અવસ્થા મલિન હોતી હૈ, જીવ મલિન હોતા ઉપચાર સે કહા જાતા હૈ, વ્યવહાર સે કે આત્મા અશુદ્ધ હો ગયા, ઉપચાર કા કથન હૈ, उपचार को अनुपचार माने तो मिथ्या तो का दोष आता है, आत्मा मलिन हो गया, आत्मा शुद्ध हो गया, कपड़ा मलिन हो गया, कपड़ा राता हो गया, कपड़ा तीन काल में लाल हो सकता, कपड़ा तीन काल में मलिन हो सकता, हां कपड़ा की अवस्था माटी का संगसेन अपनी योग्यता से निमित रूप माटी अने कपड़े की अवस्था की योग्यता मलिन होने की, तो अवस्था मलिन होती है कपड़े की, कपड़े की अवस्था मलिन होने पर भी कपड़ा तो स्वच्छ ही रहता है। जैसे शीतल स्वभावी जल अपनी योग्यता से और अग्नि का निमित्त का योग से अवस्था उष्ण होती है, कहा जाता है कि पानी गर्म हो गया, कहा पानी गर्म हो गया, व्यवहारिक जन के अंदर क्या बोलनी क्या होती है कि पानी गर्म हो गया स्नान करना है, भैया पानी गर्म हो गया, क्या पानी गर्म हो गया, वहां ऐसे न कर पानी तो शीतल है उसकी अवस्था गर्म हो गई है आप स्नान कर लो, लंबा लंबा वाक्य आवे तो कहां अंत ही आवे, अंत ना आवे उसका, शॉर्ट में कहना पड़ता है कि पानी गर्म हो गया स्नान कर लो है? तो पानी गर्म होता है, कहा जाता है पानी गर्म, मगर पानी गर्म नहीं हो सकता है तीन काल में, अपना शीतल स्वभाव छोड़ता नहीं है। पानी की अवस्था उष्ण हो गई वो भी पर्याय दृष्टि से है, स्वभाव दृष्टि से तो उष्णता अग्नि की है पानी की है, शीतलता पानी की है, उष्णता अग्नि की है। आहा, ऐसी चीज तो इधर है ना, इसका खुलासा कि मात्र परदेवना निमित्त थी अवस्था मलिन थी जाए छे। पूर्व का जो पंडित लोग है ने वो भी जैसा स्वरूप है ऐसा स्पष्टीकरण भावार्थ में करता है, आत्मा मलिन हुआ, आत्मा मलिन हुआ, आत्मा मिथ्या दृष्टि हुआ, वो तो भ्रांति है, आत्मा तीन काल में मलिन मिथ्या दृष्टि हो सकता, गायक तो गायक है, उसके अवस्था में मिथ्या तो मलिनता, मलिनता आश्रव की है, मलिनता जीव की, जीव की तो निर्मलता है, जीव तो पवित्र है, अपवित्र हुआ है वो तो आश्रव तत्व अपवित्र होता है, अपवित्र आत्मा होता अवस्था मलिन थी जाए। द्रव्य दृष्टि थी तो द्रव्य जे छे ते छे, जब मलिनता होती है पर्याय में तब आत्मा तो शुद्ध वैसा का वैसा रहता है, वो मलिन होता नहीं, मलिनता उसके अंदर प्रवेश नहीं होती है, मिथ्यात्व तो की मलिनता पर्याय में है, पर्याय की एक समय की अवस्था में उसकी सत्ता मात्र में मलिनता है, भगवान आत्मा की सत्ता में मलिनता प्रवेश करती नहीं, इसलिए उसका आश्रय करने से मलिनता दूर हो जाती है, सम्यक दर्शन शुद्धता पर्याय में प्रकट समर हो जाता है, आश्रव का निरोध होकर समर होता है। द्रव्य जैसे पर्याय अवस्था दृष्टि से जोवामां आवे तो मलिन देखाय छे, इधर देखता हूं तो मलिनता दिखती है अने इधर देखता हूं तो निर्मलता दिखती है दिखाई देती है, तो इधर देखूं तो शुद्धता है अने इधर देखूं तो अशुद्धता है, ऐसा ऐसा करने के बाद ऐसा कर इधर दृष्टि लगाने से बाद में इधर देखता है, अरे इधर भी शुद्धता है, इधर भी शुद्धता है, इधर भी मलिनता कहां गई कि छू हो गई। इधर नहीं झुकना, ख्याल रखना। दो है पड़खा, अनादिकार का मलिनता भी पर्याय में है, ऐसा स्वीकार करना, ऐसा स्वीकार करना कि मलिनता है, अपना दोष है, मैं मेरा शुद्धात्मा का अनुभव नहीं करता हूं ने, तां तक पर्याय में मलिनता अश्रु तत्व है, मिथ्या तो है। दो का ज्ञान करने के बाद इधर झुक जाना और बाद में इधर देखता है तो अरे मिथ्या तो कहां गया, मां तो शुद्ध पर्याय प्रकट हो गए। ऐसा करना जैसा है। अच्छा प्रश्न आया, ऐसा ऐसा करने तो करे तो उस आत्मा का लाभ होता, नहीं प्रमाण से देखे जाए, मगर नहीं का सहारा लेकर मैं शुद्ध हूं अशुद्ध नहीं हूं तो निषेध नहीं करे तो पर्याय में मलिनता दूर होने वाली नहीं है, प्रमाण में अटकता है। प्रमाण के बाद नहीं का प्रयोग करना चाहिए, नहीं में विधि निषेध है, प्रमाण में विधि निषेध होता। एक दफे ऐसा हुआ कि हिम्मतनगर का एक मिठा भाई है व्यापारी कापड़ का, उसके वहां बेल लोग सब साड़ी लेने को आया तो अच्छा कपड़े पहन कर जो सीमन देखती है दिखाई दिखाओ में तो सीमन देखती कि अच्छा कपड़े गरा गया, आज 500,000 रुपया वकरा हो जाएगा। तो इसने क्या किया, भोगी भाई ओ लाओ साड़ी लाओ, तो 50 साड़ी का ढेर कर दिया, ये साड़ी। वो देखती रही, वो भाई क्या देखती रही, देखा करे 10 मिनट सही, 15 मिनट सही, 20 मिनट सही। भोगी भाई वो तो देखता है, लेता तो कुछ तो बेन आप क्या करते हैं कि मैं तो साड़ी देखने के लिए आया हूं, ये देखने की दुकान नहीं है। लेने वाला नहीं है तो आप कृपा करके, ये देखने की दुकान है मेरी नहीं, हम तो वक्रा, मेरा भी थोड़ा काम हो जावे और आपका भी, देखने से आपका ही काम नहीं होगा अने हमारा भी काम नहीं होगा, समझे। दूसरे दिन दूसरी भाई आई तो दुकान तो है तो आवे नहीं, ग्राहक बताया, देखने के बाद उसने क्या किया, 50 साड़ी में एक साड़ी ले लिया तो एक उपाधि हो गया, 49 हो गई, समझे। ऐसे दो जीव आया ज्ञानी के पास, नव तत्व का ज्ञान कराते दो को, तो एक ने क्या किया, नव तत्व जाना नव तत्व है, उसमें से शुद्धात्मा निकाला, नहीं तो आपका काम नहीं है इधर। दूसरा ने नव तत्व जानकर उसमें से खींच लिया शुद्धात्मा, तो नव तत्व है वो गया, तो उसका भी काम हुआ, अने गुरु का प्रसन्नता, आहा आज अच्छा शिष्य आया, हमें मेहनत सफल हुई। ऐसे भाई साहब का प्रश्न है ना, उसका उत्तर चलता है कि देखे जाए तो द्रव्य शुद्ध है, पर्याय अशुद्ध है, द्रव्य शुद्ध है, द्रव्यार्थिक नहीं, द्रव्य शुद्ध है, पर्यार्थिक नहीं, पर्याय अशुद्ध है। निश्चय आत्मा करता है अने व्यवहार नहीं से आत्मा करता है, निश्चय भोगता है व्यवहार नहीं से भोगता है, ऐसे मात्र ज्ञान करने से आत्मा उपलब्धि होती नहीं है। दो को देखने के बाद एक की आंख बीच जाना नहीं, एक आंख खुल जा, ये मैं हूं, बस ये मैं हूं, तो अपना काम हो जाता है, ऐसी बात है। आगे भावार्थ चलता है, 5 मिनट बाकी है। द्रव्य दृष्टि तो द्रव्य जे छे ते छे, अने पर्याय दृष्टि थी जोवामां आवे तो मलिन ज देखाय छे। ए रीते आत्मानो स्वभाव ज्ञायकपणु मात्र छे, आत्मा तो ज्ञायक ज्ञायक जाननार, आत्मा का स्वभाव राग करना वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, अने तेनी अवस्था पुद्गल कर्मना निमित्ती रागादि रूप मलिन छे ते पर्याय छे। पर्यायनी दृष्टि थी जोवामां आवे तो मलिन ज देखाय छे, इधर ही देखे इधर नहीं देखे, इधर देखे तो मलिन दिखते है, पर ये तो मलिन दिखते है। अने द्रव्य दृष्टि थी जो आमा आवे तो ज्ञायक पण तो इधर देखे तो मैं तो शुद्ध हूं, ज्ञायक हूं, वैरागी नहीं हूं, कई जड़पणू थयु नहीं। अहीं द्रव्य दृष्टि ने प्रदान करी कहू छे के प्रमत्त अपरत ना भेद छे ते तो परद्रव्य ना संयोग जनित पर्याय छे। आ हा हा પ્રમત અપ્રમત દોય પર્યાય રાગ ઓર વિતરાગ ભાવ મિથ્યાત અવસ્થા ઓર કેવળ જ્ઞાન કી અવસ્થા ચૌદમા ગુણ સ્થાન દોય પરદ્રવ્ય ના સંયોગ જનિત પર્યાય હે પરદ્રવ્ય ના સંયોગ જનિત યાની 106 ગુણ સ્થાન તક પરદ્રવ્ય કા સદભાવ નિમિત્ત હે તો સંયોગ ઓર 7 મે સે 14 મે ગુણ સ્થાન ઓ જો સંયોગ થા ઉસકા વિયોગ હુઆ અભાવ હુઆ તો અભાવ સે ઉત્પન્ન હુઆ તો સબ પરદ્રવ્ય કા સંયોગ સે ઉત્પન્ન હુઆ એસા કહા જાતા સદભાવ અભાવ દોઈ નિમિત્ત રૂપ કર્મ કા સદભાવ નિમિત્ત અને કર્મ કા અભાવ નિમિત્ત સે હુઆ તો સબ સ્વભાવ સે ઉત્પન્ન નહીં હુઆ સંયોગ સે ઉત્પન્ન હુઆ સંયોગ જનિત પર્યાય વો તો સૂક્ષ્મ બાત હૈ થોડી ઓર કલ લેગા